दिन भर 5 जुलाई दिन गुरुवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। झारखंड में जमीन अधिग्रहण बिल पर प्रदेश बंद, 16,000 लोग लिए गए हिरासत में। झारखंड में ही भीड़ की ओर से 5 लोगों की हत्या के केस में सभी अभियुक्त बरी।
जो इन्वेस्टिगेशन था वो भी सही नहीं हो पाया और इसमें इन्वेस्टिगेशन कितनी चली है उसमें कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि इन लोगों ने मारा या किसने मारा।
और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी है केंद्र बनाम राज्य का टकराव।
उसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली में संविधान की स्थिति क्या है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद ऑफिसर्स ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया है।
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। झारखंड में जमीन की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया था, जो काफी असरदार रहा। इस दौरान 16,000 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर कथित तौर पर बच्चों को बेचने का आरोप लगा है। बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में चैरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में चैरिटी की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो सिस्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे सहयोगी नीरज सिन्हा।
रांची पुलिस और बाल कल्याण समिति का कहना है कि अभी और कई बच्चों को अवैध तरीके से बेचे जाने की बात सामने आई है। उन बच्चों के माओं के नाम पुलिस को मिले हैं, लिहाजा तफ्तीश जारी है। गौरतलब है कि मानव तस्करी से मुक्त कराई गई औसी नाबालिग युवतियां जो अविवाहित रहते हुए गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें निर्मल हृदय यानी मिशनरी ऑफ चैरिटी में आश्रय दिया जाता है। फिलहाल चैरिटी होम में आश्रय ले रही 13 अन्य नाबालिग युवतियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि दक्षिण पश्चिम सीरिया में हुए सरकार समर्थक बलों और विद्रोहियों के बीच ताजा संघर्ष के कारण 3,23,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं। एजेंसी ने एक बयान जारी करके जॉर्डन से सीरिया की तरफ रह रहे हजारों लोगों को अपनी सीमा में आने की इजाजत देने के लिए कहा है, लेकिन जॉर्डन ने यह कहते हुए इस गुजारिश को ठुकरा दिया है कि विस्थापितों को सीरिया के अंदर सुरक्षित जगह मुहैया करवाना संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है। ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि ब्रितानी कपल की जान खतरे में डालने वाला नर्व एजेंट वही है जिसे 4 महीने पहले पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर कथित हमले में इस्तेमाल किया गया था। जावेद ने संसद में कहा कि ब्रितानी जोड़े पर नोविचोक ग्रुप का रसायन इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ये जोड़ा उन जगहों पर गया था जहां पर पूर्व रूसी जासूस सरगेई और उनकी बेटी यूलिया गई थी। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने प्रवासियों के मामले पर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से अलग राय जाहिर की है। जर्मन चांसलर ने बर्लिन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मानवता यूरोप की आत्मा है और अगर यूरोप अपनी आत्मा को बचाना चाहता है तो उसे परेशानी में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ओरबान का कहना था कि मानवतावादी बने रहने का सही तरीका यह है कि अपनी सीमाओं को बंद करके उन देशों की मदद की जाए जहां से प्रवासी आते हैं। इस मामले पर अंगेला मर्केल ने कहा,
Das Problem, was ich sehe und wo der Unterschied ist, ist, dass wir immer daran denken müssen.
मुझे लगता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मामला लोगों से जुड़ा हुआ है। ये उन लोगों से जुड़ा है जो हमारे पास आते हैं। यूरोप का बुनियादी सिद्धांत है मानवता। मेरा मानना है कि मानवता यूरोप की आत्मा है और अगर हम अपनी आत्मा को बचाए रखना चाहते हैं, अगर यूरोप और उसके मूल्य दुनिया पर अपना छाप छोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये थे जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया की सत्ताधारी पार्टी APC 2 हिस्सों में बंट गई है। राष्ट्रपति मुहम्मदू बुखारी के एक पूर्व सहयोगी ने अलग होने का ऐलान किया है। आबुजा में BBC के एक संवाददाता ने बताया कि ये विभाजन अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव के दौरान राष्ट्रपति बुखारी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जो कि एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सऊदी अरब में बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल की पहली तिमाही में इसे 12.9% आंका गया है। सऊदी सरकार ने विजन 2030 के तहत तय किया है कि वो अभी से तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाएगा। स्पेन और फ्रांस पुलिस ने आर्मेनिया के अपराध तंत्र पर कार्रवाई करते हुए 129 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने कहा है कि इनमें से कुछ मोस्ट वांटेड संदिग्ध थे जिनके ऊपर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पुलिस ने 70 जगहों पर छापे मारे जिनमें हथियार, वाहन, गहने, गैरकानूनी सिगरेट और नकदी बरामद की है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की दूसरी सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। झारखंड सरकार का भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल प्रदेश में सियासी संग्राम की वजह बन गया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मसले पर प्रदेश बंद बुलाया, जिसे दूसरी कई विपक्षी पार्टियों और आदिवासी मूल निवासी संगठनों ने समर्थन दिया। इस दौरान भारी संख्या में नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हाल ही में बीजेपी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है। विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों का आरोप है कि सरकार रैयतों किसानों की जमीन लेकर बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
आज रांची बंद रहेगा, जिंदाबाद।
यह गुस्सा सरकार के खिलाफ है, जो राजधानी रांची से लेकर राज्य के छोटे बड़े कस्बों और शहरों में दिखा। बंद को असरदार बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों और कम से कम 27 आदिवासी संगठनों के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे। जेएमएम के समर्थकों के साथ हेमंत सोरेन ने जमकर नारेबाजी की तथा सरकार पर निशाने भी साधे।
ये बात अब संकल्पित हो चुका है कि ये सिद्धू कानू बिरसा की धरती पर इन अंग्रेजों को भी भारतीय जनता को तोड़ जवाब इस राज्य की जनता दे।
बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रेल रोकी तथा सड़कों पर आगजनी भी की, लिहाजा पुलिस दिन भर उनसे जूझती रही। इस दौरान पूरे राज्य में 16,000 लोगों को गिरफ्तार कर कैंप जेल में रखा गया। गिरफ्तार किए जाने वालों में तमाम बड़े नेताओं के अलावा विपक्ष के दर्जन भर विधायक भी शामिल थे। गौरतलब है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन किया है। सरकार कानून में संशोधन के जरिए रेल परियोजना, पाइपलाइन, जल मार्ग समेत अन्य आधारभूत संरचना के लिए जमीन लेना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड ने पहले ही विस्थापन का बहुत दर्द सहा है और अब जनता के विरोध से सरकार को इस फैसले से पीछे हटना चाहिए।
झारखंड के हित में ये कानून नहीं है, इसलिए हम सब लोगों ने ये कहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस बंद का लोगों ने समर्थन किया है, तो सरकार को आप इस समर्थन को देखते हुए भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक है उसको वापस लेना चाहिए।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि सरकार ने पहले छोटा नागपुर काश्तकारी तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन की कोशिश की और अब ये जन विरोधी कदम उठाया जा रहा है।
जनता के खिलाफ है, जन विरोधी खिलाफ है। अगर जरा सा ईमानदारी रही होती तो सीएनटी एसपीटी एक्ट का संशोधन नहीं होता और 2013 के कानून लागू करो, तुमको जो विकास की बात है वो करो।
इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने विपक्ष के बंद आरोपों पर जवाब दिया है।
आज के बंद को पूरे तरीके से जनता ने नकार दिया। विपक्ष ने बड़े बड़े दावे किए थे कि महागठबंधन का महाबंद होगा, लेकिन पूरे तरीके से ये सुपर फ्लॉप रहा। दरअसल विपक्ष नहीं चाहता कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास हो और सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो संशोधन है उनका विरोध कर रहा है, जिससे रैयतों को समय पर मुआवजा मिले।
जबकि आदिवासी महिला वर्षा गाड़ी इससे इत्तेफाक नहीं रखती।
क्या नौबत आन पड़ी कि सरकार को ये भूमि अधिग्रहण बिल मतलब तुरंत में पास करना पड़ा? तो हम लोगों का ये लगता है, ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम आज आदिवासी मूलवासी खतरे पे हैं और ये सरकार से हमें पूरी तरह से डर है कि ये हमारा अस्तित्व मिटाने में लगी हुई है।
इधर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विपक्ष विरोध की राजनीति कर रहा है, सरकार राज्य का तेज विकास चाहती है। बहरहाल जमीन के सवाल पर 17 दिनों में झारखंड ने दो बंद का सामना किया है, अभी टकराव खत्म होने के आसार भी नहीं दिखते। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
झारखंड से ही एक और खबर। पिछले साल झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग के एक मामले में अदालत ने 4 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। ये मामला सरायकेला खरसावां जिला अदालत में विचाराधीन था। घटना मई 2017 की है, जब बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने झारखंड में 7 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसके कुछ और मामले अभी अदालतों में विचाराधीन हैं। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही झारखंड की चर्चित मॉब लिंचिंग के एक मामले के 4 अभियुक्त अदालत से बरी हो गए हैं। अदालत का तर्क है कि झारखंड पुलिस इस मामले के नामजद अभियुक्तों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा सकी। इसकी सुनवाई सरायकेला खरसावां के अपर जिला जज आशीष सक्सेना के कोर्ट में की जा रही थी। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील देवराज ज्योतिषी ने बीबीसी को बताया कि चारों अभियुक्त पहले से ही जमानत पर थे, अब उन्हें पूरी तरह रिहा कर दिया गया है।
वो जो दोनों आदमी को मारा गया, पहला कि वो कहां मारा गया, किस जगह मारा गया, किसने मारा, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं रहा। वो मारने वालों का नाम नहीं है कि किसने मारा, क्या चीज से मारा। समय का जो इन्वेस्टिगेशन था वो भी सही नहीं हो पाया, और इसमें इन्वेस्टिगेशन फिर भी चलिए, उसमें कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि इन लोगों ने मारा या किसने मारा। पहले बेल में थे, ऑलरेडी बेल में थे, लोग रिहा हो गए, पूरे संपूर्ण रूप से रिहा हो गए।
सरायकेला खरसावां जिला कोर्ट के सरकारी वकील पीके पंजियार ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलते ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। पीके पंजियार ने बीबीसी से कहा,
कोर्ट के जो एपीजी है वो दिए है, उसका कॉपी के लिए जजमेंट आएगा तब उसका
साल 2017 की 18 मई को जमशेदपुर के पास 3 अलग अलग जगहों पर भीड़ ने 7 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इनमें हल्दी पोखर गांव के सज्जाद और सिराज भी शामिल थे। इस गांव के 2 और लोगों को भी बच्चा चोर होने का आरोप लगाकर भीड़ ने बुरी तरह पीटा था और उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि घटनास्थल 2 अलग अलग जिलों में थे, लिहाजा इन मामलों में कई प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थी। एक प्राथमिकी सज्जाद के परिजनों ने राजनगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सरायकेला खरसावां की जिला अदालत ने नामजद अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इस फैसले से मृतक सज्जाद की पत्नी नाजनीन परवीन बुरी तरह टूट चुकी हैं।
और क्या कहेंगे, बोलिए, जब आदमी सभी नहीं है तो और बोल के क्या फायदा, और हम नहीं लड़ सकते, मेरा पास कुछ है भी नहीं ना जो हम लड़ेंगे, ये अपना घर तक नहीं है जो हम लड़ सकते।
दरअसल पिछले साल बच्चा चोरी की अफवाह में 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की हत्या के बाद झारखंड सरकार ने दावा किया था कि इन मामलों का कोई भी आरोपी कानून से नहीं बच पाएगा। अब अदालत के इस फैसले के बाद हल्दी पोखर गांव के लोग सरकार के दावे और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
दिल्ली के बुराड़ी में एक ही घर के 11 लोगों की मौत की जांच कुछ आगे बढ़ी है, लेकिन गुत्थी अभी अनसुलझी ही है। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिसमें परिवार के सदस्य घर में स्टूल लाते हुए दिख रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं स्टूलों का इस्तेमाल फांसी लगाने के लिए किया गया होगा। बुराड़ी के घर में बीते रविवार को एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से पूछा कि अब ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है।
दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बुधवार की देर रात वो सीसीटीवी फुटेज जारी की है जो ललित भाटिया के घर के ठीक सामने वाले घर पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस फुटेज के हिसाब से पुलिस का कहना है कि इसमें जो नज़र आ रही हैं वो बहू हैं घर की सविता और उनकी बेटी नीतू, ये स्टूल खरीद के जा रहे हैं। तो स्टूल ले जाते हुए आपको बता दें कि जो 10 लाशें जो सीलिंग से लटकी हुई मिली, तो वो 10 लाशें स्टूल के ऊपर खड़े हुए थे और उसके बाद फिर वो फांसी हुई थी, ऐसा पुलिस का दावा है। और उसके बाद फिर 15 ही मिनट के बाद जो घर के जो सबसे छोटे बच्चे थे, ध्रुव और शिवम उनका नाम था, वो तार लेकर जा रहे हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये वही तार हैं जिससे फांसी पे लटका गया हो। फिर 10:40 का फुटेज उसमें है, सामने नजर आ रहा है, जिसमें वो डिलीवरी का जो लड़का है जो रोटियां लेकर आया था घर में पहुंचाने के लिए। फिर 11 ललित भाटिया, जिनके ऊपर कहा जाता है कि जो दावा करते थे कि उनके ऊपर पिताजी का की आत्मा आती थी और वो उससे बात करते थे, उनको देखा गया कि वो घर के कुत्ते को लेकर बाहर टहलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और 4 में ही वो वापस आते हैं 11:04 पर। लेकिन पुलिस का कहना है कि 11:04 के बाद से लेकर सुबह के 6 तक किसी के भी घर में अंदर प्रवेश करने का कोई सुराग नहीं है।
यानी पुख्ता तौर पे पुलिस ने अब ये मान लिया है कि इसमें कोई और थ्योरी नहीं है, सिर्फ तंत्र मंत्र जैसी थ्योरी ही है, और इसी दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही।
नहीं, चूंकि देखिए कि ये वारदात हुई है शनिवार की देर रात, और रविवार को ये शव बरामद हुए हैं। सोमवार तक पोस्टमार्टम और इनका क्रियाक्रम हुआ है, तो पुलिस को सिर्फ दो ही दिन मिले हैं अभी अनुसंधान के लिए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अनुसंधान किस दिशा में जा रहा है। मेरी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात हुई है, वो किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि आत्महत्या ही थी, या वो ये मान के ही चल रहे हैं कि ये मर्डर ही था, लेकिन पुलिस ने 3 महीने के फुटेज बरामद किए हैं और उनको देख रही है कि क्या, चूंकि अगर आत्माओं को बुलाने की बात है, जाहिर सी बात है कि पुलिस को लगता है कि कोई ना कोई तो होगा जो ये सिखाता होगा कि कैसे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है।
बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को सुन रहे थे आप। सुप्रीम कोर्ट के कल के आए फैसले के बाद भी लगता है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच का टकराव खत्म नहीं हुआ है। ताज़ा मामला अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के प्रत्येक फैसले को रोक नहीं सकते हैं। समझा जा रहा था कि इसके बाद शायद अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच जो तनातनी रही वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। दिल्ली से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट सुने।
अभी आम आदमी पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का पारा शायद बढ़ ही रहा था कि तभी उसे और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को फिर एक नया झटका लगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली में बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो आदेश दिया था उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली में संवैधानिक स्थिति क्या है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद ऑफिसर्स ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया है।
दिल्ली सरकार का ये हुक्म कुछ ट्रांसफर्स को लेकर था। मनीष सिसोदिया के आदेश पर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये अधिकार फिलहाल उपराज्यपाल के पास हैं, इसीलिए ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। कल दिए गए अपने हुक्म में देश की सबसे ऊंची अदालत ने कहा था कि एलजी को जनता के जरिए चुनी गई हुकूमत की मदद और सलाह से सरकार चलानी है। अदालत ने यह भी साफ किया था कि भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दूसरे विभागों पर सूबे की सरकार को अधिकार होगा और हर फैसले को उपराज्यपाल नहीं रोक सकते। लेकिन हुआ कुछ और ही। सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल इस मामले पर कहती हैं,
जस्ट बिकॉज ये जजमेंट आया है ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो है वो राजनीति खत्म हो जाएगी या पार्टीज के बीच में पावर टसल खत्म हो जाएगा।
जानकारों का मानना है कि दिल्ली के सत्ता संघर्ष में राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पहली तो ये कि जब मोदी के नाम पर भारत भर में बीजेपी की जीत हो रही थी तो एक नए नए बने राजनीतिक दल ने दिल्ली में पार्टी को बुरी तरह पटखनी दी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जरिए प्रधानमंत्री पर हर दिन एक नया प्रहार। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल के बीच तालमेल होने की बजाय शुरू से ही तनाव का माहौल बना रहा और दिल्ली सरकार के एक के बाद दूसरे फैसले एलजी के द्वारा रोके जाते रहे। कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राज्य के खास किरदार को फिर से दोहराया। अवनी बंसल कहती हैं,
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को और जो मैंने आपको बताया दो आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 239 AB इनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें नेशनल इंटरेस्ट है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, तो यूनियन का भी इसमें जो है हस्तक्षेप रहेगा एलजी के माध्यम से, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी इसमें जो है वो हस्तक्षेप रहेगा। तो ऐसे में दोनों को आपसी मिलन करके काम करना है।
अरुण जेटली ने कल के फैसले की व्याख्या में लिखा है कि अदालत ने राज्य सरकार के मत को अहम माना है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र की वरीयता को बरकरार रखा है। तो अंततः मामला यह होगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस रूप में देखेगा। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
और अब एक विशेष रिपोर्ट। डिजिटल दुनिया का प्रसार होने के बाद जैसे हमारे श्रोता ये रेडियो कार्यक्रम अपने फोन पर भी सुनते हैं, वैसे ही बीते कुछ सालों से लाखों लोग टीवी छोड़कर अपने पसंद के कार्यक्रम अपने मोबाइल फोन पर देखने लगे हैं। खासतौर से नौजवानों में ये रुझान तेजी से बढ़ा है। क्या यह केबल और सेटेलाइट टीवी बाजार के लिए खतरा है? हमारे संवाददाता जुबैर अहमद हाल ही में मनोरंजन प्रोग्राम बनाने वाली कंपनियों के गढ़ फिल्म नगरी मुंबई गए और वहां मीडिया उद्योग के लोगों से मिलकर इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। सुनिए।
लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा, 25 दिन है, बचा लेना अपने शहर को।
तुम्हें क्यों फोन किया?
मैंने भी उसे यही पूछा सर।
बताया उसने?
उसने बोला सब मर जाएंगे।
सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाजें फिल्म सेक्रेट गेम्स से जो कल यहाँ रिलीज होने वाली है।
सस्पेंशन ऑर्डर।
ये फिल्म बॉलीवुड ने नहीं बनाई है, ये सिनेमाघरों में भी नहीं दिखाई जाएगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स नामी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
इनका इस करेंसी के साथ कनेक्शन हो सकता है।
नेटफ्लिक्स की तरह भारत में अब 30 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिनमें हॉटस्टार सबसे बड़ा है। समीर सक्सेना द वायरल फीवर या TVF नामी प्रोडक्शन हाउस के संस्थापकों में से एक हैं। उनकी कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए TV सीरियल की तरह कॉमेडी के प्रोग्राम और वेब सीरीज बनाती है। समीर सक्सेना कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म 5 साल पहले आया, लेकिन इसने असल रफ्तार 2-3 साल पहले पकड़ा।
अलग अलग तरह के माध्यम हैं देखने के लिए किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को। तो एक तो हो गया सिनेमा, जो कि बड़ा पर्दा हो गया, एक हमारा टेलीविज़न हो गया। अब ये एक माध्यम है जहां पर आप सारी चीज़ें अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पर देख सकते हैं।
ऐसे दर्शकों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिन्होंने TV को आउट करके डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना लिया है। सेंसर या सरकारी प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होता। हॉटस्टार IPL के कारण मार्केट लीडर है, उसके अधिकारी अजीत मोहन कहते हैं।
इफ आई लुक एट द स्केल ऑफ हॉटस्टार टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 150 मिलियन।
अगर हम आज हॉटस्टार के स्केल को देखें तो हमारे हर महीने 15 करोड़ यूजर हैं। हमसे जो लोग जुड़ते हैं वो जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम देखने के लिए उनके पास समय और ध्यान दोनों होना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ दर्शक आ चुके हैं। TV से लगभग 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फासले तेजी से कम हो रहे हैं।
इस खेल को वो लोग चलाते हैं जो इस खेल को जानते ही नहीं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बॉलीवुड के चंद बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी इससे जुड़ने लगे हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 4 बड़े डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं, जिनमें करण जौहर भी शामिल हैं। लेकिन क्या ये केबल और DTH TV कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है? अशोक मनसुखानी हिंदुजा मीडिया ग्रुप इन केबल के कर्ता धरता हैं।
ज़्यादातर लोग आज एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो 800 चैनल इंडिया में हैं वो काफ़ी वैरायटी देते हैं, बट वो एक वर्ग को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जो मैं मानता हूँ वो है 25 से 35 का।
देश की 60% आबादी को नज़रअंदाज करना ब्रॉडकास्टर्स और TV डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो युवा पीढ़ी जुड़ रही है जिसने या तो केवल मोबाइल और सोशल मीडिया देखा है या TV से उबकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि TV के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में TV मार्केट का विकास 10% के हिसाब से होगा, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास दर TV से कहीं अधिक होगा, यानी 25 से 30% के हिसाब से इसका मार्केट बढ़ेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि फायदा केवल दर्शकों को होगा। जुबैर अहमद, BBC मुंबई।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, यानी आपकी राय का।
आपकी राय में नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का,
और मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे। तो पहले शुरुआत करते हैं इस पोस्टकार्ड से जो हमें भेजा है ऋषिकेश गुप्त ने, ग्राम मलिकपुरा मुर्तजीपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से।
क्या लिखते हैं?
लिखा है कि हाल के कुछ दिनों में BBC रेडियो पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लग रहा है, जिसको मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं। ये अलग बात है कि पिछले एक साल में लगभग दर्जन भर लोगों को आपने अपने यहाँ पे नौकरी दी है, जिनमें उच्चारण, भाषाई कौशल, विश्लेषण की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन निष्पक्षता पर उंगली उठाना कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो गया। कहने का इनका पूरा मतलब है कि जो भी शब्दों का इस्तेमाल होता है वो गलत है। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी लिखा है कि कंपनी शब्द का हिंदी वाक्य में बहुवचन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कंपनीज की जगह कंपनियों, तो कंपनियां वाक्य के अनुसार लिखा जा सकता है, और इस तरह की कई सारी छोटी छोटी इन्होंने बातें बताई हैं।
जी, भाषा के प्रति आपका जो आग्रह है हम उससे 100% सहमत हैं। हम इस बात के प्रति भी सजग हैं और जागरूक हैं कि हमारे यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उच्चारण की गलतियाँ हो रही हैं, वाक्य विन्यास में गलतियाँ हो रही हैं, और व्याकरण का भी दोष है। इस बात से हम सजग हैं, लेकिन बस मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो नए साथी आए हैं वो रेडियो की बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, और उनको धीरे धीरे BBC के रंग में ढलने में थोड़ा समय लग रहा है। आप सहयोग बनाए रखें और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गलतियां हैं इनको हम दुरुस्त करें। इन गलतियों की ओर आपने हमारा ध्यान दिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है जयंत कुमार दास का, जिन्हें की वसुतुल्ला खां की डायरी बहुत अच्छी लगती है और इनका सुझाव है कि दोबारा भी इसे सुनाया जाए।
बहुत सारे हमारे श्रोता इस बात पर एतराज करते हैं कि एक बार एक रिपोर्ट या पैकेज अगर चलता है तो उसको दोबारा क्यों सुनाया जाता है, लेकिन दास साहब दोबारा सुनाना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन अमेरिका से हमारी सहयोगी, नई सहयोगी जो हैं इरम अब्बासी, अगर कभी बीच बीच में डायरी वहां से भेजेंगी तो वो हम जरूर प्रसारित करेंगे।
और ये हमारे पास चिट्ठी आई है सुनील शर्मा की सरनो बाड़मेर राजस्थान से, लिखते हैं कि आपने हॉकी चैंपियन लीग को पर्याप्त कवरेज नहीं दी जिसमें भारत की टीम उप विजेता रही, बल्कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को ज्यादा कवरेज दिया आपने।
और हमारे एक श्रोता है आरा से, वो लिखते हैं आशुतोष कुमार पांडे कि आप फुटबॉल का अच्छी ढंग से कवरेज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जितना समय हमारे पास होता है उसमें फुटबॉल जाहिर सी बात है एक बड़ा खेल है, इसलिए हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हॉकी का जब खेल शुरू होता है तब हमारा कार्यक्रम 8 बजे समाप्त हो जाता है, इसलिए भी हम उसमें उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हॉकी के प्रति आपका प्रेम हमें गदगद कर रहा है वाकई।
और हमारे पास ये मेल आया है गणेश प्रसाद हुजदार का, लिखते हैं कि आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर भ्रष्टाचार और ड्रग्स की समस्याओं को खत्म करके देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का वादा करते हुए मेक्सिको का पहला वामपंथी प्रधानमंत्री बने। इस संबंध में दुनिया जहान में आदर्श राठौर की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी।
जी, और भी चिट्ठियां आई हैं जो आदर्श राठौर की इस प्रस्तुति की तारीफ करती हुई चिट्ठियां हैं।
कृष्ण कुमार ने झांझपट्टी आशा पोस्ट खुटौना जिला मधुबनी बिहार से यही बात लिखी है।
जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे पास मेल आया है मुंबई से आदित्य का, जिन्होंने लिखा है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना है, 3 जुलाई के प्रसारण में प्रयोग हुए 50 से ज्यादा उर्दू शब्दों की सूची दी है और पूछा है कि बीबीसी हिंदी है या बीबीसी उर्दू।
देखिए, हिंदी और उर्दू एक ऐसा ये विषय है जिस पर अगर हम बात करना शुरू कर दिया तो पूरा कार्यक्रम ही समाप्त हो जाएगा। बस हम ये कहना चाहते हैं कि हम वो भाषा बरतते हैं जो आम लोग समझें, आम लोग जिस पर बात करें, जिस जबान में बात करते हैं।
और स्कारबरो इंग्लैंड से भारतेंदु श्रीवास्तव लिखते हैं कि मैंने अभी अभी राजेश जोशी को इस आलोचना की सफाई देते सुना है कि वो हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ हैं। मैं मानता हूं कि राजेश जोशी वस्तुगत विश्लेषण करते हैं और उन्हें ये समझना चाहिए कि धर्म और राजनीति जैसे विषयों पर कोई भी पूरी तरह वस्तुगत या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो आगे लिखते हैं कि पिछले 50 वर्षों से पश्चिमी दुनिया में रह रहा हूं और पता चलता है कि भारतीय पहचान को पश्चिमी पहचान के हिस्से के तौर पर भी देखा जाता है।
ये तो आपका बहुत गूढ़ विषय आपने उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो ये मेरे बारे में कहा कि वस्तुगत विश्लेषण जो है वो करते हैं। तो कोशिश इसी की रहती है कि समाचारों में विचार ना आए और जहां विचारों की गुंजाइश है वहां पर विचार प्रकट करने में हिचके ना कोई भी, यही जनतंत्र है, यही पत्रकारिता है। चलते चलते हमारा पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब समय है खेल समाचारों का, और खेल की खबरों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिका सिंह। बताइए ज्योतिका
जी, क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड में शुरू हुई T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत की शानदार जीत हुई और कल दूसरा T20 मुकाबला होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। और थोड़ी देर पहले मेरी वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली से बात हुई और मैंने जाना कि कैसा मुकाबला होगा कल का।
कल आप फिर से यही इंडिया की डोमिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड को टाइम लगेगा इस हार से उभर के आने में, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफा 8 विकेट से हारी है मैच, तो उनको अपने बहुत लेवल के ऊपर से जाके गेम खेलना पड़ेगा इंग्लैंड को। और जहां तक मैच का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि भारत जो 1-0 का एडवांटेज है इसको खोएगा।
और अब बात बैडमिंटन की, रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने अपना 23वां जन्मदिन आज जापान की आया ओहरी को हराकर मनाया। उधर टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में भारत के बैडमिंटन स्टार HS प्रणय भी इंडोनेशिया ओपन बीट ब्लू एफ विश्व टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी सिंधु पिछले सप्ताह मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। प्रणय ने चीनी ताइपेई के वांगू झू को 21-23, 21-15, 21-13 से पराजित किया। सिंधु ने 17वीं रैंकिंग वाली ओहरी को सीधे गेम में 21-17, 21-14 से शिकस्त दी।
बहुत शुक्रिया ज्योतिका सिंह खेल समाचारों के लिए। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। झारखंड में जमीन की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया था। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर कथित तौर पर बच्चों को बेचने का आरोप लगा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि दक्षिण पश्चिम सीरिया में हुए सरकार समर्थक बलों और विद्रोहियों के बीच ताजा संघर्ष के कारण 3,23,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं। ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि ब्रितानी कपल की जान खतरे में डालने वाला नर्व एजेंट वही है जिसे 4 महीने पहले पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर हुए कथित हमले में इस्तेमाल किया गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिमन्यु कुमार साहा ने। तो अब मुझे यानी कुलदीप मिश्र को सभी सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।